چلے یہ پرندے حوصلے اب جوان ہے اڑ چلے یہ پرندے حوصلے اب جوان ہے نہ رکے گا یہ کاروان دور ہم سے نہیں اب آسمان ہے قدم سے قدم مل چلے آپ ہیں ساتھ میں جب چلے
کانٹوں سے ٹکرا کر پھولوں کو پایا جا سکتا ہے، کاجل کی اندھیری کوٹھری میں دامن کو بچایا جا سکتا ہے، اگر ارادے نیک ہیں تو سچ کہتا ہوں یاروں، اجڑے چمن کو بھی بہاروں سے سجایا جا سکتا ہے۔ نمسکار، میں ہوں امت وادھوا، نئی سوچ نیا وشواس کارکرم میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، کارکرم کی پچھلی کڑی میں ہم نے برہمچریہ کی دھارنا کو وستار سے سمجھا۔ برہمچریہ سروشریشٹھ دھرم کہا گیا ہے اور شاستروں میں بھی اس کی اپار مہیما لکھی گئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے کیول شاستروں سے اپنے مطلب کی بات ہی نکالی تھی۔ آج بھی ہم برہمچریہ کے اوپر ہی چرچا کریں گے، اور اس وشے پر چرچا کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ایک بار پھر اس منچ پر آمنترت کرتے ہیں گلوبل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر ماؤنٹ آبو سے کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ انٹینسوسٹ ڈاکٹر سچن جی کو۔ ڈاکٹر سچن، اس منچ پر پناہ آپ کا سواگت کرتے ہیں۔
دھنیہ واد۔
آپ نے پچھلی کڑی میں برہمچریہ ورت کی دھارنا کو بڑے وستار روپ سے سنتوش جنک روپ سے ہمیں سمجھایا۔
جی،
برہمچریہ کی دھارنا بہت مہتوپورن ہے، یہ ہمارے درشکوں کو سمجھ میں آیا، لیکن برہمچریہ کی دھارنا سے سماج کو، وشو کو کیا لابھ ہونے والے ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے۔
جی، برہمچریہ ایک بہت ہی گمبھیر وشے ہے۔ برہمچریہ سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، یہ تو ویکتی، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یو ٹرائی اٹ آؤٹ،
جی،
تو آپ کو سوتہ ہی وہ فائدے انوبھو میں آئیں گے، اور اتنے جلدی آئیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ نہ جانے ہم کس ایک دوسری دنیا میں آ گئے۔ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ برہمچریہ سروشریشٹھ تپ ہے، سروشریشٹھ بل ہے، برہمچریہ کے ان گنت فائدے ہیں، اور یہ جو فائدے ہیں یہ وہی ویکتی انوبھو کر سکتا ہے کہ جو اس کا پالن کرتا ہے۔ یہ ایسا ایک ورت ہے کہ اس کا تھوڑے سمے کے لیے بھی اگر کوئی پالن کر لے تو اس کے سارے جو انوبھو ہے، جو فائدے ہیں، اس کو پرتیکش جیون میں انوبھو ہوتے ہیں، جیسے کہ پریکٹیکل لائف میں۔
جی،
فائدوں کی اگر بات کرے تو سب سے پہلے میں آؤں گا فزیکل، شاریرک ستھل پر۔ تو شاریرک ریتی سے اگر دیکھا جائے تو برہمچریہ سواستھ جو ہے اس کا آدھار مانا جاتا ہے برہمچریہ کو۔ ایسی کئی سارے ہمارے شاستروں میں بھی لکھے اور بہت سارے ماڈرن ریسرچ جو ہوئے ہیں اس سے بھی یہ نرویواد جیسے روپ سے پرمانت ہو گیا ہے کہ برہمچریہ سے ویکتی سوستھ ہوتا ہے، برہمچریہ سے دیرگھایو ہوتا ہے، برہمچریہ سے کئی ایسے روگ ہے جن کا وہ شکار نہیں ہوتا۔ برہمچریہ سے منشیا میں ایک ریزسٹنس پاور جو ہوتی ہے، اس کی ڈیزیز ریزسٹنس پاور، وہ بڑھتی ہے، کیونکہ برہمچریہ کا پالن کرنا ارتھات سمپورن سیم، سیلف ریسٹرینڈ جس کو کہتے ہیں، ویکتی جس میں سیمت جیون جیتا ہے، سنتولت جیون جیتا ہے، سنتولت آہار لیتا ہے، اس وجہ سے وہ کئی ایسے سارے روگوں سے چھوٹ جاتا ہے جو کہ برہمچریہ کے نہ ہونے سے ویکتی جن سے گرسیت ہوتا ہے۔ آج کل کے اگر لوگوں کو آپ دیکھو جو برہمچریہ کا پالن نہیں کر رہے ہیں، تو ان کا اگر جیون دیکھو تو وہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ دیو درشن سے زیادہ ڈاکٹر درشن زیادہ کرتے ہیں، امرت پان سے زیادہ दवा पान ज्यादा करते हैं, औषधि पान ज्यादा करते हैं, ये उनकी हालत है। जबकि एक ब्रह्मचर्य के जीवन में एक तेज होता है, एक ओज होता है, एक सामर्थ्य होता है, एक असीम अपरिमित एक बल उसको अनुभव होता है, एक अतिरिक्त ऊर्जा का उसको अनुभव होता है जी। तो ये सारे जो फायदे है ये शारीरिक स्तर पर, तो व्यक्ति इससे हेल्दी बन जाता है। अकाले मृत्यु जो बहुत सारी बीमारी और मृत्यु जो होती है उसको भी टाला जा सकता है ब्रह्मचर्य के व्रत से। तो ये तो हो गया शारीरिक रीति। दूसरा है मानसिक, मेंटल। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य के व्रत को पालन करे तो मन एकाग्र हो जाता है उससे, और आप जानते हैं कि एकाग्रता की शक्ति से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है दुनिया में
जी।
मनोबल बढ़ता है, विल पावर बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य के व्रत को पालन करे तो वो जो चाहे वो कर सकता है जीवन में। दुनिया में जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए अगर आप देखो तो वो आविष्कार ब्रह्मचर्य की अवस्था में ही किए गए हैं। जैसे कि कोई एकांत में चला गया, अंतर्मुखी हो गया और ऑटोमेटिक संयमित हो गया, तो वहां पर बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। वैज्ञानिकों के जीवन भी देखो या बड़े बड़े स्पिरिचुअल ट्रुथ्स जिसको अध्यात्म के रहस्य कहा जाता है, उसका भी रहस्य उद्घाटन ब्रह्मचर्य की अवस्था में ही होता है। तो यहां बात है एकाग्रता की, एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है, विल पावर बढ़ जाती है, मन की दृढ़ता बढ़ जाती है। कोई भी हम संकल्प करते हैं तो दृढ़ता से उसे पूर्ण करते हैं। यहां पर मैं वापस स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण देना चाहूंगा कि एक बार ऐसा हुआ कि वो ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया होती है 36 वॉल्यूम्स, तो एक बार वो पढ़ रहे थे तो उनका एक मित्र आया और उनसे कहने लगा कि ये तो असंभव है, अपने जीवन काल में शायद ही कोई व्यक्ति इतने 36 वॉल्यूम्स पढ़ सकेगा।
जी।
तो वो कहते हैं उनसे विवेकानंद जी कि अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने तो 18 वॉल्यूम्स अभी पढ़ लिए। और वो उनको लेता है एक एक वॉल्यूम और प्रश्न पूछता है तो वो हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं
जी, उनको याद
इतनी
था
वो स्मरण शक्ति बढ़ती है। मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ मानसिक स्तर की, उसमें स्मरण शक्ति मेमोरी पावर बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी मेमोरी, क्योंकि मन एकाग्र होता है। द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल। ब्रह्मचर्य से मन शुद्ध होता है और जितना शुद्ध होता है उतना वो एकाग्र होता है, और एकाग्रता से हम कुछ भी अर्जित कर सकते हैं। तो ये हो गया मानसिक। तीसरा आते हैं बौद्धिक स्तर, इंटेलेक्चुअल। बौद्धिक स्तर पर बुद्धि को तो जैसे प्रकाश कहा जाता है, तो बौद्धिक स्तर पर व्यक्ति की जो निर्णय शक्ति है, परख शक्ति है, वो बढ़ जाती है ब्रह्मचर्य के धारण। फिर उसके बाद है नैतिक स्तर। नैतिक स्तर मतलब मॉरल। उसमें आप देखो कि जितना जितना व्यक्ति मॉरल बनता जाता है, नैतिक बनता जाता है, बहुत सारी उसमें जो व्यसन आदतें कुरीतियां वो सब कुछ उसमें खत्म होने लगता है
जी।
और एक नैतिक व्यक्ति एक राष्ट्र के लिए जैसे का एक उपहार है,
संपत्ति
के समान है नैतिक व्यक्ति। फिर उसके बाद में आप अगर आए आर्थिक स्तर पर, अभी आप देखो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता और असंयमित है, उसके जीवन में काम विकार तो जैसे उधम मचा देता है
जी।
और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता
जी, और दूसरी तरफ उसके कर्म भी बिगड़ते,
कर्म भी बिगड़ते हो। लास्ट में है सामाजिक
जी,
समाज। आज समाज की जो अवस्था है, जैसे हमने पिछले कड़ी में भी देखा, बेरोजगार, निर्धनता, भूखमरी, ये जो भी समस्याएं हैं, इनको अगर बहुत गहराई से स्टडी की जाए तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं इसके पीछे काम विकार है
जी।
कहीं ना कहीं काम विकार ही है इनके पीछे। आज जो हवा जो में प्रदूषण जो फैल रहा है उसके पीछे भी मनुष्य की दूषित वृत्तियां ही है। तो ब्रह्मचर्य एक ऐसा तप है कि जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और सबसे मुख्य वो है आध्यात्मिक। अभी बिना ब्रह्मचर्य के आप स्वप्न में भी अध्यात्म में उन्नति करने का नहीं सोच सकते। अध्यात्म पथ जो है, जो मार्ग है, इसके जो पथिक है, उनके लिए पहली शर्त ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य अर्थात ऐसी चर्या जैसे ब्रह्म में स्थित होने की चर्या है ये
जी।
अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की चर्या है, ऐसा जीवन यापन करना जो कि नियम से बंधा हो, जिसमें संयम हो। अभी इसमें बहुत ऐसी बातें आ गई है, जैसे उसमें से जो मुख्य मनोवैज्ञानिक जो व्यक्ति है सिगमंड फ्राइड, उसने जो सबसे पहले जो फिलॉसफी डाली कि मनुष्य का मूलभूत स्वभाव जो है वो काम है। अभी उसने ये जो कुछ लिखा उसका संसार के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा और विश्व भर के सब लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया।
सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है, जैसे पिछली कड़ी में भी हमने चर्चा की, ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा हमारे शास्त्रों में है, मगर हमने उस महिमा की ओर ध्यान न देकर के अपने मतलब की बात निकाली। ठीक इसी तरह से आप जिन फ्राइड सर की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी जब लिखा तो लोगों ने अपने काम की बात
मतलब। जी जी जी, पर उसमें ऐसा है कि उसके ही जो शिष्य, उसके ही जो अनुयायी है, वो बाद में उसके विरोध में हो गए, क्योंकि उन्होंने उस अध्यात्म के कुछ और रहस्यों को जाना। उनका ही एक शिष्य जो है कार्ल जंग और एडलर, इन्होंने इसका बहुत जोरदार विरोध किया है, क्योंकि फ्राइड ने जो कहा था, जो कि एक विकृत मानसिकता, कि व्यक्ति जो है मूलभूत उसका स्वभाव काम ही है और इसको दबाए ना, और उसको जितना दबाएंगे वो और शक्तिशाली बनकर बाहर निकलेगी। इसके लिए ये जो विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ पर दमन की फिलॉसफी नहीं है। हमें अपनी भावनाओं को, ये जो विकार है, इनको सप्रेस नहीं करना है, वरन उनको रूपांतरण करना है, सब्लिमेशन जिसको हम कहते हैं, नॉट सब्रिमेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से भी अच्छा शब्द है सब्लिमेशन। मतलब उसको भी दिव्यीकरण, पवित्रीकरण जिसको हम हिंदी में कहा जाए, उदात्तीकरण जिसको हम कह सकते हैं, कि ये जो भावना है, जो दमित भावना है, हम इसको ज्ञानमयी और स्नेहमयी, प्रेममयी समझ से उसको समझते हैं और उसका त्याग करते हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। बाकी अगर आप देखो संसार में द्वापर युग से अब तक कई लोगों ने ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है, कई लोगों ने उसके ऊपर शास्त्र लिखे, परंतु वो खुद उस पर संपूर्ण रीति से नहीं चल सके। यहां तक कि देखा गया है कि बहुत सारे लोग विक्षिप्तता को प्राप्त हुए, क्योंकि ब्रह्मचर्य को उन्होंने काम को दबा दिया। ये जो दमित भावनाएं है सुनामी की तरह बाहर निकलती है जैसे ही इसको मौका मिले, परंतु भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो वो उसे दमन की फिलॉसफी नहीं सिखाते, सप्रेशन नहीं सिखाते, परंतु रूपांतरण, सब्लिमेशन, जिसको ऐसी एक ज्ञान देते, ऐसी समझ देते हैं कि बच्चे की तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हारा तो मूल स्वभाव ही पवित्रता है। इसके लिए अपने ही मूल स्वभाव में टिक जाना, स्थित हो जाना, इतना कठिन नहीं है। तो इस तरह से ये सारे ब्रह्मचर्य की महिमा तो अगाध महिमा है, मैं कितना कहूं उसके बारे में और।
जी जी जी, तो दोस्तों पवित्रता की महिमा, ब्रह्मचर्य की महिमा हम समझ रहे हैं, और शायद पतित पावन भगवान को हम बुला भी इसीलिए रहे थे कि इस पवित्रता को पा सकें। जैसा डॉक्टर सचिन ने हमें बताया कि हमारा मूल स्वभाव, आत्मा का मूल स्वभाव पवित्रता है, और ब्रह्मचर्य को अपनाने से शारीरिक स्तर पर, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति को पाया जा सकता है। ब्रह्मचर्य के फायदे हमारे सामने हैं, ये विचारणीय बात है, और मुझे लगता है कि हम सब इस पर विचार भी जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब, आप जो समझा रहे हैं हमारी समझ में जरूर आ रहा है, लेकिन कई प्रश्न ऐसे होंगे जो हमारे दर्शकों के मन में उठ रहे होंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं।
नमस्ते डॉक्टर सचिन भाई, मैं नमिता ओडिशा से। ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ ताप है, लेकिन बुढ़ापा में हमारा सहारा कौन बनेगा संतान बिना?
जी बहुत अच्छा प्रश्न है, संतान बिना बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा?
जी
ये बहुत ही विचारणीय बात है कि वास्तव में बुढ़ापे में सहारा कौन। आज देखो भारत की जो सभ्यता है वह ऐसी सभ्यता है कि जिसके लिए गायन है रामायण में, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव ही माथा, सबसे पहले उठ के अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करते थे, ये भारत की सभ्यता है। परंतु आज अगर आप एक नजर दौड़ाए इस संसार में, तो जो हालत है वो देखकर आपको एकदम बहुत ही अंदर से जैसे पता नहीं क्या हो जाए। आप देखो आज के जो युवा है, ऐसे कितने ही कपल्स है जो ओल्ड है, उनका एक ही बेटा है विदेश गया, विदेश में शादी कर लिया, वापस आया ही नहीं। ऐसे कितने ही है कि जो जिनके बच्चे है, परंतु उनको माँ बाप जैसे कि एक बोझ लगते हैं, उपेक्षा करते हैं उनकी। जगह जगह पर आज ओल्ड एज होम खुले हुए हैं, वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, और आप किसी भी वृद्धाश्रम में जाओ और किसी भी कपल जो है यहाँ पे, या अकेले कोई रहते हैं, उनसे पूछो तो उनका जीवन सुन के आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। ऐसी उनकी करुण गाथा है, मतलब किस तरह उनको उपेक्षित किया गया, किस तरह अपमानित किया गया, किस तरह के बोल उनके प्रति बोले गए। और अगर आप पूछो उन लोगों को तो आप देखेंगे कि कई लोग वृद्धाश्रम में आके थोड़े बहुत सुखी है, वो कई लोग तो ऐसे भी कहेंगे कि हम अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं, उस जीवन से ये जीवन बहुत अच्छा है। कई लोग ऐसे है कि जिनका एक पार्टनर नहीं है, किसी कारण से गुजर गया या नहीं है या कुछ हो गया, तो ऐसे लोग हैं उनके जीवन में बहुत एकाकीपन है, अकेलापन महसूस करते हैं, वो जीवन के प्रति जैसे नीरस हो गए। यहाँ तक तो बात है कि आजकल ओल्ड लोगों के लिए मैरिज ब्यूरो भी खोले गए हैं कि वो अपना एक जीवन साथी ढूंढते हैं। ये जो उम्र दराज लोग हैं, ये ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं कि जो उनके साथ रहे, कम से कम उनसे बात तो करे, ऐसा कोई हो कि जिनके साथ वो थोड़ी खुशियां तो मनाए, क्योंकि संसार की तरफ से संपूर्ण रूपेण उपेक्षित है ये। मुझे एक बात याद है, कई बच्चे तो अपने माँ बाप को मार देते क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा, और फिर उनका जो खर्चा है वो कौन करेगा। ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं कि जिनके वजह से नीम हकीम के पास जाते हैं और अपने माँ बाप को कुछ दे देते हैं। तो आज का जो व्यक्ति है, क्या बुढ़ापे में उसका अभी कोई सहारा? ऐसे 30-35% लोगों की आज की जो समस्या है वो है असुरक्षा, ये आर्थिक प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज। उसमें फिर ओवरऑल अगर देखा जाए बुढ़ापे में उनका भोजन, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनका एकोमोडेशन, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो वास्तव में क्या बुढ़ापे में व्यक्ति की पत्नी या पति या उसका बेटा या बेटी उसके सहारे है? ये बहुत ही विचारणीय बात है। अगर हम इसकी और गहराई में जाए तो हमें पता चलेगा कि व्यक्ति का वास्तव में कोई सहारा नहीं है, उसके अपने कर्म ही उसका सहारा है। और एक बहुत सुंदर बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो विश्वविद्यालय है, इसमें ऐसे कई लोग हैं जो बहुत पहले से जुड़ गए और जब वो वृद्धत्व की अवस्था में आए तो यहां आते ही उनको एक नया परिवार मिला
जी,
एक नया जीवन जैसे उनको मिला। ऐसे तो कितने हैं जो प्यार उनको लौकिक में नहीं मिला, उनको वो अलौकिक परिवार में मिला। तो ये जो आपका सवाल है कि अगर कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और उसकी बीवी नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, कौन उसकी संभाल करे? और सबसे मुख्य बात तो इस यज्ञ में कि यहां पर व्यक्ति जो समर्पित होता है या आता है, वहां परमात्मा को ही अपना एकमात्र आधार बनाता है
जी।
तो उसके अतिरिक्त और कौन आधार चाहिए? वास्तव में अगर देखा जाए तो वही एकमात्र हमारा आधार है। और दूसरा, ये जो ईश्वरीय परिवार में जो स्नेह, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट प्राप्त होता है, उसके आगे तो वो संसार का कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो बाकी संस्थाओं का तो मुझे नहीं पता, पर इस संस्था में मैं कहूंगा यहां आ जाना और यहां का बन जाना, इस परिवार से जुड़ जाना, अर्थात जैसे आप इंश्योरेंस कर रहे हो,
क्या
आपको सब कुछ मिल रहा है यहां पर
जी,
आपके फ्यूचर के लिए, आपके ओल्ड एज के लिए। अर्थात कि व्यक्ति का वास्तव में कोई सहारा नहीं है, उसके अपने कर्म ही उसका सहारा है
जी। दोस्तों, पारिवारिक और सामाजिक परिदृश्य जिस तरह से परिवर्तित हुए हैं पिछले कुछ सालों में, हम जानते हैं कि आज की औलाद अपने बूढ़े माता पिता का सहारा नहीं बन पा रही है। ज्यादातर केसेस हमारे आस पड़ोस में ही हो जाते हैं, और ऐसे में अब भी हम संतान से ही यदि अपेक्षा रखते हैं तो सोच लीजिए हम किस ओर जाना चाह रहे हैं। और दूसरी ओर डॉक्टर सचिन जब हमें बता रहे हैं कि ईश्वरीय परिवार में आकर के हम केवल और केवल ईश्वर को ही अपना आधार बनाते हैं, तो ईश्वर सबकी देखरेख के लिए जिम्मेदार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य की धारणा से उम्र के हर पड़ाव को सुरक्षित रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ और प्रश्न हमारे दर्शकों के हो सकते हैं, कुछ और प्रश्न ले लेते हैं।
नमस्ते सर, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम दीपक है। मेरा प्रश्न यह है कि अगर किसी दाम्पत्य में कोई एक पर्सन चलता है तो उसे बहुत दिक्कत होती है, इसका निवारण क्या है?
डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
जी। देखिए, जैसे मैंने पिछली कड़ी में भी बताया कि विवाह जो है, जैसे कि पति और पत्नी, उसमें एक ही रथ के जैसे दो पहिए हैं
जी।
और विवाह एक बहुत ही पवित्रतम बंधन है, एक ऐसा शुद्ध बंधन है कि जिसमें पति और पत्नी दोनों मिलकर के गति और सदगति की ओर बढ़ना, ये उनका उसमें कर्तव्य है। इसी तरह का विधान शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और सभी धर्म इस तरह की बातों को मानते हैं। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य को समझ लेता है, उसकी धारणा करता है, परंतु दूसरा जो उसका पार्टनर है, पति या पत्नी, वो उसे समझ नहीं पाता है, वो उसकी धारणा नहीं करता है, मतलब सहमति नहीं है। तो ये बहुत ही गंभीर तरह का प्रश्न है, इसको हमको थोड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का तुरंत पालन नहीं करता है, सबसे पहले तो उसे समझना पड़ेगा ये ब्रह्मचर्य है क्या। उसको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा ये ब्रह्मचर्य का आदेश, ये पवित्रता का आदेश इस समय किसने दिया है, और इस समय हमारा लक्ष्य क्या है। वर्तमान परिवेश को देखते हुए ये स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है और भगवान स्वयं पवित्रता का सागर है, उससे अगर मिलन मनाना है तो उतनी ही पवित्रता हमारे अंदर चाहिए। ये तो हो गई समझ। अभी जब तक ये समझ उस दूसरे व्यक्ति को ना हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि थोपी जाए किसी के ऊपर
जी,
इट इज समथिंग विच कैनॉट बी फोर्स्ड ऑन एनीबॉडी।
एग्जैक्टली।
अभी इसमें क्या किया जाए? अभी प्रश्न ये उठता है कि अगर एक व्यक्ति इस ज्ञान को स्वीकार करता है, दूसरा नहीं स्वीकार करता है, तो ये जो जिसने स्वीकार किया है क्या वो तब तक वेट करे जब तक उसका पार्टनर उसे समझ ना जाए
जी,
या ब्रह्मचर्य के पथ पर चल पड़े? क्या करना चाहिए? इसका एक सरल सा उत्तर है कि अगर वो उसके लिए वेट करता है कि भाई इसको भी समझ में आ जाए,
हाँ जी,
तो शायद ये व्यक्ति कभी इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये मार्ग ही बड़ा ऐसा मार्ग है कि इसमें आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। पहली बात तो
जी,
ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सोचे कि मैं तब तक वेट करूं, तब तक भोग विलास कर लूं और बाद में जब इसकी समझ में आ जाए तब हम दोनों चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं है
जी।
पहली तो ये बात है कि इसमें अगर वो सहमति नहीं है तो इस मार्ग पर अकेले ही चलना पड़ेगा। दूसरा, अभी ये जो व्यक्ति है जो कि ब्रह्मचर्य का मार्ग जिसने अपना लिया है और दूसरा है उसने नहीं अपनाया, तो इस व्यक्ति को दूसरी आत्मा, वो जो दूसरा उसका जो युगल है, उसके प्रति बहुत शुभ भावनाएं रखनी है, श्रेष्ठ भावनाएं रखनी है, एब्सोल्युटली पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। और रोज वो जब मेडिटेशन करता है तो उस आत्मा के लिए, मतलब जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशन, सकाश देनी है उसको रोज, उससे जैसे कि आत्मा को इमर्ज करके उससे बात करना, उसके प्रति शुभ भावना रखना, उसके प्रति रिस्पेक्ट रखना, स्नेह रखना, स्नेह को कम नहीं होने देना है। और उनके जो पारस्परिक संबंध है उसमें मनमुटाव उत्पन्न ना हो। अभी रिसेंटली मेरे पास एक भाई आए थे जो कि रहते कुवैत में है
जी।
उनकी पत्नी उसके मां बाप के साथ रहते, अभी पत्नी और मां बाप, एक बेटा ऑलरेडी है उनको और एक संतति चाहते हैं, और ये जो भाई है इस समय ज्ञान में चल पड़ा है और बहुत ही पक्का है धारणा में
जी।
तो वो मुझसे यही प्रश्न पूछ रहा था कि मैं क्या करूं, बार बार झगड़े होते हैं। तो मैंने उनसे पहली बात कही कि आप सबसे पहले तो आपकी जो युगल है उस पे किसी बात को थोपो नहीं, क्योंकि ये जब भी इस तरह की बातें करता है तो उनको वो पसंद नहीं आती। पहले तो मैंने कहा उसकी इच्छाएं क्या क्या है। उसने कहा कि उसको तो वैष्णो देवी जाना है पर मैं कभी लेके नहीं जाता हूं क्योंकि मुझे उसमें विश्वास नहीं। मैंने उनसे कहा सबसे पहले आप उसकी इस तरह की जो इच्छाएं है उस पर थोड़ा ध्यान दो, उसको और स्नेह दो, और प्यार दो, अपने मां बाप को और प्यार दो, उनको समझो उनकी क्या आंतरिक इच्छाएं है, और उनको धीरे 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 इस ज्ञान के बारे में समझाओ, क्योंकि बिना समझ के तो व्यक्ति विरोध ही करेगा, क्योंकि ये इतना गुह्य विषय है कि बिना समझ इस पे कोई चल नहीं सकता है। ये तो मैंने पहले भी कहा है। तो इस तरह के बहुत सारे इस यज्ञ में आप देखोगे तो ऐसे कितने ही उदाहरण आपको मिलेंगे। हॉस्पिटल में भी हमारे पास एक भाई है जिनकी युगल एकदम तेज तराक जिसको कहते हैं, बिल्कुल उनसे झगड़ा करती थी। मैंने तो यहां तक सुना है कि एक व्यक्ति ऐसा था कि वो जब सुबह की क्लास के लिए जाता था तो जब बाथरूम जाता था उनकी पत्नी बाथरूम बंद कर देती थी एक घंटे के लिए ताकि वो ना जाए वहां पर, इतना विरोध घर में। परंतु ये जो विरोध है इसको बड़ी ही शांति से, बड़े ही स्नेह से, प्यार से, समझ से, कट्टरवादी न बनकर इसको सॉल्व किया जाए, उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामनाएं रखी जाए और धीरे 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 उसको इस ज्ञान से अवगत कराया जाए। तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे 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 सॉल्व होती है और दोनों ही फिर ज्ञान में चल पड़ते हैं
और परिवार भी नहीं टूटता
और पूरा परिवार, इसमें परिवार टूटने की भी बहुत संभावना होती है अगर इस तरह से हम करें तो परिवार नहीं टूटेगा। परंतु यदि हम अहंकार में आकर कि भाई मैं ऐसा, मैं तो करूंगा, जिद और सिद्ध करने का प्रयत्न किए तो उसमें परिवार टूटने की संभावना बढ़ जाती है फिर।
तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य के महत्व को या ब्रह्मचर्य की धारणा को जब तक हमने नहीं समझा था तब तक हम भी कुछ अलग ही भ्रांतियां पाले हुए थे अपने मन में। इसी तरह से पूरी संस्था को शुरू से ही सामाजिक विरोधों का सामना करना पड़ा है इसी एक धारणा की वजह से। और इसीलिए डॉक्टर सचिन एक बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है इसे आराम से, विस्तार से समझा जाए, क्योंकि इसे अचानक से नहीं लागू किया जा सकता और किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता। डॉक्टर सचिन, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक तर्कसंगत शास्त्रों का आधार और वैज्ञानिक आधार पर ब्रह्मचर्य की धारणा को बहुत ही अच्छे से हमें समझाया है और मैं समझता हूं हमारे तमाम दर्शक भी इन उत्तरों को पाकर के संतुष्ट हुए होंगे और ब्रह्मचर्य की धारणा पर और अधिक विचार अवश्य करेंगे। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में आए, मैं तमाम दर्शकों की ओर से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं।
थैंक यू,
धन्यवाद। दोस्तों, ब्रह्मचर्य ये शब्द सुनते ही हम इस विषय पर चर्चा से पीछे हटते थे, कारण अज्ञानता। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जब हमने इस विषय पर चर्चा की, इस धारणा को समझा, तब हमें स्पष्ट हुआ है कि यह धारणा, ये मूल्य तो मानव जाति के कल्याण के लिए है, कहीं ना कहीं हमने ही इसे उल्टा समझ लिया था। और इसी धारणा की वजह से ब्रह्मा कुमारी संस्था को अनेक प्रतिरोधों का शुरू से ही सामना करना पड़ा है। इस सादगी पर मौत भी न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं कि हाथों में तलवार भी नहीं। ये पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं ब्रह्मा कुमारी संस्था को, जो कि अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हैं, सादगी से जीते हैं और मनोविकारों से युद्ध कर रहे हैं बिना किन्हीं अस्त्र शस्त्रों के। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ और चर्चा नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल, नमस्कार।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें naisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414033365।